नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने तमिलनाडु के विकास के लिए 11 वर्षों में 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा केंद्र राज्य समन्वय कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा वैश्विक निर्माता डिजाइन क्षमताओं, प्रतिभा और सुसंगत नीतियों के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 73% की बढ़ोतरी हुई। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों ने शांति योजना पर चर्चा करने के लिए अबुधाबी में मुलाकात की। पूरे उत्तर भारत, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रविवार तक घने कोहरे की चेतावनी जारी और रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया और 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण का वितरण किया। उन्होंने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर रेलगाड़ी को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एकजुट होकर काम कर रहा है।
केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेडी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने पिछले 11 वर्षों में तमिलनाडु के विकास के लिए 11 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तमिलनाडु के मदुरंतकम में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र राज्य समन्वय कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।
तमिलनाडु की बहुत बड़ी ताकत हमारे किसान है, हमारे फिशरमैन है। एनडीए की केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में एग्रीकल्चर और फिशरीज में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि एनडीए की केंद्र सरकार किसानों को, फिशरमैन को हर कदम पर सपोर्ट कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु सरकार परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार विकास देने में विफल रही और भ्रष्टाचार, अपराध तथा वंशवादी राजनीति से ग्रस्त थी।
एनडीए फैमिली के हमारे सीनियर लीडर एक साथ, एक ही संकल्प के साथ यहाँ जुटे हैं और वो संकल्प है हमें तमिलनाडु को डीएमके सरकार से मुक्ति दिलानी है। हमें तमिलनाडु को एक विकसित, सुरक्षित और करप्शन फ्री स्टेट बनाना है। डीएमके सरकार के एग्जिट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
श्री मोदी ने कहा कि डीएमके सरकार को भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध कहा जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि इसने युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण की अनदेखी की है।
विकसित तमिलनाडु बनाने में हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति की बड़ी भूमिका है, लेकिन यहाँ जो डीएमके सरकार है उसने हमारे यूथ को ड्रग्स और ड्रग्स माफिया के हवाले कर दिया है। ड्रग्स माफिया स्कूल और कॉलेजों को टारगेट कर रहे हैं। डीएमके की सच्चाई पूरा तमिलनाडु जानता है। हमें अपने नौजवानों को ड्रग्स के शिकंजे से बचाना ही होगा। एनडीए को दिया गया आपका एक वोट तमिलनाडु को ड्रग्स माफिया से मुक्त करेगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वैश्विक निर्माता डिजाइन क्षमताओं, प्रतिभा और सुसंगत नीतियों के लिए भारत का रुख कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने नीदरलैंड्स के एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल लिथोग्राफी मुख्यालय के दौरे के दौरान यह बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य लिथोग्राफी से संबंधित उन्नत प्रौद्योगिकी को समझना है। उन्होंने कहा कि गुजरात के धोलेरा में भारत के आगामी सेमीकंडक्टर निर्माण प्रतिष्ठान में ASML के उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में वर्ष 2025 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 73% बढ़कर 47 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार यह वृद्धि उन नीतियों के कारण हुई है जिनका उद्देश्य देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना तथा सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में भारी निवेश करना है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की ओर से जारी वैश्विक निवेश रुझान निगरानी रिपोर्ट के अनुसार चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार तीसरे वर्ष गिरावट आई है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में वस्त्र क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेले में श्री सिंह ने कहा कि 2025 में घरेलू बाजार 6 से बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए का हो गया और कोविड के बाद की अवधि में निर्यात में भी 25% से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र रोजगार सृजन करने वाले सबसे बड़े मंचों में से एक बन गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 3 दिन के सम्मेलन में विभिन्न देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। इसमें मतदाता सूची में शुद्धता, चुनावों का आयोजन, शोध और प्रकाशन प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़े घोषणा पत्र के 5 स्तंभों पर मिलकर काम करने का संकल्प लिया। श्री कुमार ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम वाली शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की नींव है।
पहला स्तंभ मतदाता सूचियों की शुद्धता से संबंधित है। कानून के अनुसार सभी पात्र मतदाताओं के नाम वाली शुद्ध मतदाता सूचियां किसी भी लोकतंत्र की नींव होती हैं। चुनाव प्रबंधन निकायों को सुगम और पारदर्शी चुनाव संचालन के लिए सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों रक्षा बल एक ढांचे की दिशा में काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने ये बात कही।
पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर वी आर ऑल्सो लुकिंग एट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम ऐसे ढांचे पर विचार कर रहे हैं जो भविष्य में युद्ध के विकास के तरीकों पर चिंतन और विचार विमर्श करें। ये हमारे मुख्यालय के भावी संचालन और विश्लेषण समूह के विचारों का हिस्सा होगा। संगठनात्मक और रचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में तीनों सेनाएं इस दिशा में काम कर रही हैं।
ऑल थ्री सर्विसेज आर वर्किंग टुवर्ड्स इट।
प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने 50वीं सफल बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल को वर्ष 2015 में शुरू किया था। इसके बाद से प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया। विशेष श्रृंखला में आज उत्तर प्रदेश की मऊ गाजीपुर तारीघाट नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर विशेष रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में मऊ गाजीपुर तारीघाट नई ब्रॉडगेज रेल परियोजना उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 51 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को 1,765 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति दी गई थी। इसका उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूर दराज और कृषि प्रधान जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ना और गंगा कॉरिडोर में बहुमाध्यमीय परिवहन को सुदृढ़ करना है। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण में लंब वित्त पोषण और लागत साझेदारी से जुड़े विवाद, तकनीकी स्वीकृतियां तथा सामग्री आपूर्ति संबंधी बाधाओं जैसी कई चुनौतियां सामने आई, जिससे कार्य की गति प्रभावित हुई। इस परियोजना की व्यापक समीक्षा प्रधानमंत्री ने 26 सितंबर 2018 को प्रगति के तहत की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए इसकी रणनीतिक महत्ता को देखते हुए प्रणालीगत अड़चनों को दूर करने के लिए समयबद्ध और परिणामोन्मुख निर्देश जारी किए गए। इन निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई। मऊ और गाजीपुर के जिला प्रशासन ने संयुक्त सर्वेक्षण, मुआवजा वितरण और भूमि हस्तांतरण का कार्य त्वरित रूप से पूरा किया। रेल सह सड़क पुल से संबंधित वित्तीय मुद्दों का समाधान रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बीच समन्वय से किया गया। इन कदमों से धन प्रवाह सुनिश्चित हुआ, तकनीकी डिजाइन को अंतिम रूप मिला, सामग्री आपूर्ति व्यवस्था स्थिर हुई और निर्माण कार्य ने फिर गति पकड़ी। परियोजना ने 100% प्रगति हासिल की और 6 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत हुई। मऊ गाजीपुर तारीघाट ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक एकीकरण की मजबूती मिल रही है और तथा इसके दूरगामी सामाजिक आर्थिक लाभ हो रहे हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता अबुधाबी में चल रही है। लगभग 4 साल पहले यूक्रेन के साथ रूस के पूर्ण युद्ध के बाद तीनों देशों के बीच यह पहली सीधी बैठक है। ये बैठकें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बीच रूस में देर रात हुई वार्ता के बाद हो रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र का भविष्य वार्ता का मुख्य केंद्र होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया। इस कुटीर में 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में लगभग 50 पांडुलिपियां और 2300 पुस्तकें संग्रहित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रंथ कुटीर भारत की शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रपति भवन के सामूहिक प्रयासों का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के न केवल महानायक थे बल्कि स्वतंत्र भारत के दूरदर्शी भी थे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज पराक्रम दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नेताजी का साहस और वीरता देशवासियों को प्रेरित करते हैं और उनके प्रति मन में सम्मान भर देते हैं।
पोर्ट ब्लेयर आज श्री विजयपुरम बन चुका है। ये नया नाम, ये पहचान नेताजी की विजय की याद दिलाती है। इसी तरह दूसरे अन्य द्वीपों के नाम भी स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष द्वीप रखे गए। साल 2023 में अंडमान के 21 द्वीपों के नाम भी भारतीय सेना के जाबाज वीर पुरुष 21 परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए।
मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी 25 जनवरी तक घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 26 जनवरी तक इसी प्रकार की स्थिति बनी रहेगी। रायपुर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 209 रन का लक्ष्य दिया है। कप्तान सेंटनर ने सर्वाधिक 47 रन की पारी खेली। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। भारतीय सशस्त्र बल इस वर्ष कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस परेड में त्रिसेवा झांकी प्रस्तुत करेंगे, जिसका शीर्षक होगा ऑपरेशन सिंदूर, एकजुटता से विजय। झांकी में भारत के विकसित सैन्य सिद्धांत को दर्शाया जाएगा। इस झांकी में संयुक्त अभियानों, सटीक हमलों और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और नई रेलगाड़ियों को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र ने तमिलनाडु के विकास के लिए 11 वर्षों में 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा, केंद्र राज्य समन्वय कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक निर्माता डिजाइन क्षमताओं, प्रतिभा और सुसंगत नीतियों के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 73% की बढ़ोतरी हुई। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों की शांति योजना पर चर्चा करने के लिए अबुधाबी में मुलाकात और रायपुर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 209 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।